रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभुदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अयोध्याकांड, ऐसा लोग मानते हैं गोस्वामी जी महाराज ने सबसे पहले अयोध्या कांड लिखा। भरत जी महाराज का चरित्र उनको सब चरित्रों से श्रेष्ठ लगता था और भरत जी का चरित्र भी राम जी के वनवास के बाद निखरता है, इसलिए वे भरत जी महाराज की भक्ति में डूबे हुए थे तो ये अयोध्या कांड लिखा। लिख दो भले ही, परंतु अयोध्या कांड के लिखने का फल क्या हुआ कि पूरी रामायण लिख दी। अंत में ऐसी कोई प्रेरणा हुई, भरत जी महाराज की आज्ञा हुई, क्या हुआ, फिर पूरी रामायण लिखी। अयोध्या कांड में तीन श्लोक में वंदना है, संस्कृत के तीन श्लोक हैं। तीन श्लोक का कारण क्या है, क्या बताएं? कोई तो कहते हैं इसमें तीन भगवान के बड़े भक्तों की कथा है, कोई कहते हैं कि भाई इसमें राजनीतिक घटना में तीन घटनाएं विशेष हुई है, कोई कहते हैं कि वनवास के अंदर ये तीनों गए थे इसलिए तीन संख्या है। तीन की संख्या अब राम गोस्वामी जी महाराज जाने। पहले श्लोक में भगवान शंकर का स्तवन हुआ, शंकर भगवान से प्रार्थना की वो शंकर भगवान मेरी रक्षा करे, और तीसरे श्लोक में भगवान राम की वंदना की है। परंतु दोनों के बीच में जो दूसरा श्लोक है उसमें एक नई बात आई, वो है भगवान के मुख कमल की छवि, उससे वे मंगल कामना करते हैं तुलसीदास जी महाराज, भगवान की मुख छवि। ये एक सबसे आश्चर्य की बात है, भगवान से कुछ आशा करें तो अलग है, भगवान की मुख छवि से आशा करते हैं। शंकर भगवान के लिए तो बहुत सी बातें कहने में एक बात कही है कि देखिए आपके सिर के ऊपर गंगा जी है और आपके भाल पर चंद्रमा है, गले के अंदर आपके जहर है और वक्षस्थल के ऊपर सांप है, ये सब बातें क्या अर्थ बताती है कि एक भगवान शंकर के स्वरूप के अंदर विभिन्न विभिन्न बातें हैं, गंगा जी भी है तो चंद्रमा भी है तो जहर भी है। चंद्रमा तो है अमृत, चंद्रमा में अमृत रहता है और गले शंकर भगवान के ये गले के अंदर जहर है, और व्यालराट सर्प उनके छाती पर है, शरीर के ऊपर भस्म लगाए हुए हैं, प्रलय करने वाले भगवान शंकर वे हमारी रक्षा करें। कैसी विचित्र विचित्र बातें दी है, भगवान का स्वरूप जैसे विचित्र विचित्र है ऐसे अयोध्या की घटनाएं भी बड़ी विचित्र विचित्र है। कहां तो राज्याभिषेक की बात है, कहां एकदम वनवास की बात आ जाएगी। वनवास की बात भी आपात आती है, देना नहीं चाहते हैं लेकिन वनवास देना पड़ता है। ये बहुत विचित्र रहस्य की बातें हैं ना, इसलिए भगवान शंकर के अलग अलग स्वरूप से अयोध्या कांड की एक तरह से छवि बता रहे हैं। अब भगवान की छवि बताते हैं कि देखिए भगवान की मुख कमल की शोभा। भगवान को पता चला कि मेरा अभिषेक होने वाला है तो भगवान राजी नहीं हुए, सारी अयोध्या हो रही थी, भगवान एकदम शांत, प्रसन्नताम या न गताभिषेकत है। वनवास की बात सुनी तो सब रो रहे थे परंतु राम जी के चेहरे पर कोई कष्ट, कोई भी म्लानता नहीं थी, चेहरा उतरा हुआ नहीं था, सबका उतरा हुआ, केकी का उतरा हुआ, केकी का, केकी अंदर से बहुत रोई हो, भगवान मन में गए था, बहुत रोई। केकी को जितना दुख हुआ राम जी के वनवास का, उतना दुख किसी को, कौशल्या जी को भी नहीं हुआ है, क्योंकि कौशल्या जी थी वो ज्ञानवती थी, उनको ज्ञान था। केकई जी ऐसी है कि जिनके अंदर राम जी के प्रति अपार प्रेम था, इसलिए केकई जी ने रोते रोते वरदान मांगा है, केकई जी ने रोते रोते विदा किया है। केकई ने जितनी अपनी प्रसन्नता का त्याग किया है राम के लिए, उतना किसी महारानी, किसी माता ने नहीं किया। आज भगवान की इस मुख छवि तक पहुंचाने का यदि कोई कारण है, श्रेय है, तो ये केकई को दिया जाता है। यदि केकई जी नहीं होती तो राम जी के अवतार का असली प्रयोजन उद्घाटित नहीं होता, प्रकाशित नहीं होता। केकई के कारण से भगवान रावण को मार सके, सीता की परीक्षा हुई, हनुमान जी महाराज जैसे भक्तों का परिचय हुआ। रामायण के मूल रामायण में यदि रीढ़ की हड्डी देखी जाए तो ये केकई महारानी है। केकई के वरदान से पहले राम जी का कोई विशेष चरित्र नहीं, एक धनुष तोड़ा ये बात है, एक अहिल्या का उद्धार हुआ ये बात है, एक ताड़का वगैरह जिसका आम जनता से कोई मतलब नहीं। धनुष टूटा तो उनका कोई सब देवताओं से कोई मतलब नहीं, सबसे बड़ा मतलब सिद्ध होता है साधकों का और ओर का। देखो कैसे कैसे साधन करने वाले भगत मिलेंगे अरण्य कांड में, देखो तो बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष, ये सब साधना करने वाले यदि वहां राम जी वन में नहीं जाते तो उनकी साधना का क्या होता, वो तो कोई आकर के अयोध्या में दर्शन करने से रहे। इसलिए केकई माता का चरित्र सबसे ऊंचा, सबसे विलक्षण, और सबसे नीचे रही केकई माता। जैसे वृक्ष है उसकी जड़ें जमीन में रहती हैं और वृक्ष के फल फूल पत्ते टहनियां सब बाहर रहती है, जड़ के ऊपर ही वृक्ष टिका हुआ, जड़ के ऊपर टिका हुआ पर एकदम अलग। ऐसे केकई है वो राम राज्य रूपी, राम जी के चरित्र रूपी वृक्ष की जड़ है केकई माता। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। गुरु महाराज के चरण कमलों के रज को अपने सिर के ऊपर रख करके मैं मन रूपी दर्पण का सुधार कर रहा हूं। मन रूपी दर्पण है, दर्पण माने कांच। ये कांच के सुधार की बात आज क्यों कही गोस्वामी जी महाराज ने, क्योंकि ये अयोध्या कांड है, ये कांच के ऊपर ही निर्भर हुआ। राजा ने एक बार कांच में मुख देखा ना कि अरे ओहो, ये मुकुट को सीधा किया कि कान के पास सफेद बाल आए, सफेद बाल आए, चेत हुआ। तो मन रूपी कांच को सुधारने के लिए हमको क्या चाहिए कि गुरु महाराज के चरण कमलों का रज चाहिए, उनके मिट्टी चाहिए। कि महाराज मिट्टी से तो कांच खराब होता है, पर ये देखो उसके ऊपर फूल है, फूल से उसको साफ करो देखे, तो वो फूल का जो रज होता है, वो फूल के अंदर रहने वाला रज, वो मिट्टी नहीं है, वो वास्तव में उसका पराग है, वो पराग से वो साफ होता है। मैं मेरे योग्यता से ये चरित्र नहीं लिख रहा हूं, ये चरित्र मैं गुरु महाराज की कृपा से लिख रहा हूं। अब यहां कौन गुरु है हमारे तुलसीदास जी महाराज के, कोई कह नहीं सकते हैं। यहां यदि गुरु है तो भाई गुरु के नाम से यहां भरत जी महाराज को लेना चाहिए, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने त्याग पूर्वक भगवान के चरणों में प्रेम करने के भक्तों में भरत जी महाराज को पहचाना है। इसलिए भरत जी महाराज के चरणों में प्रेम हुआ, ये लिखा है श्री गुरु चरण सरोजरंग, ये भरत जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके लिखते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं देखो, जब से भगवान ब्याह करके आए अयोध्या में खूब आनंद हो ही रहा है, अयोध्या में नहीं 14 भवनों में आनंद हो रहा है, सब जगह लोग बड़े प्रसन्न है कि राम सीता का विवाह हो गया, सब रिद्धि सिद्धि ये उमड़ रही है, ये उमगी अवध अम्बुदी कहुआई, अवध रूपी समुद्र के अंदर रिद्धि सिद्धि संपत्ति ये नदियां आकर जैसे मिलती है, कोई भी नदी है समुद्र में मिलती है, तो अयोध्या एक समुद्र है, रिद्धि सिद्धि नदियां है वो आकर के अयोध्या में मिल रहे, खूब रिद्धि सिद्धि रह रही है, वहां के लोग हैं सब प्रकार से बड़े सुंदर हैं, अंतःकरण से भी सुंदर है, सब भांति सुंदर हो माने अंतःकरण से अंदर से भी सुंदर है और बाहर से भी सुंदर है। देवता लोगों ने जब अयोध्या को देखा तो उनको भी ये लगा कि ओहो, विधाता की सबसे बड़ी करतूती, सबसे बड़ा निर्माण ये अयोध्या का निर्माण है, पर अयोध्या से भी सुंदर वहां भगवान राम जी का मुख कमल था, उसको देखते रहते थे लोग, कभी तृप्त होते ही नहीं, और माताएं तो अपने बच्चों को कभी छोड़ना ही नहीं चाहती थी। मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोरथ बेली, राम जी का मुख देख लेते तो ऐसा लगता है कि हमारे मनोरथ रूपी लता है वो फल गई फूल गई है। सारे नगर में राम जी महाराज के रूप की और उनके करतूतों की बड़ी प्रशंसा हो रही थी, लोगों के मन में अपने आप ये भाव पैदा हो रहा था कि अब दशरथ जी महाराज वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए, उनको अब राम जी महाराज को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देना चाहिए, सारे नगर में घोषणा कर देनी चाहिए कि भाई अब हमारे बाद ये राजा राम होंगे। देखो दो प्रकार से युवराज की घोषणा होती थी कि भाई देखो हम बैठे तब तो तू बैठे, हमारे मरने के बाद में ये राजा होगा एक नंबर, अथवा हमने ये युवराज बना दिया, ये राज का काम देखेगा, हम भगवान का भजन करने जा रहे हैं, दो प्रकार से होती थी। उन्होंने देखा कि मेरे जीते जी युवराज पद पर इसको अभिषिक्त कर दूं, मैं ये देखते हुए जाऊं कि मेरे बाद ये राजा होगा तो मेरे प्राण आराम से निकलेंगे। ये तो होगी पहली बात, ये बात ली है पिछले बालकांड का सारांश लिया, कोई भी बात कहो तो भाई पिछली बात का सारांश कहते हुए आगे बात बढ़ानी चाहिए। एक बार की बात है कि महाराज दशरथ जी राजसभा में बैठे हुए थे। उस राजसभा के अंदर सब लोगों के मन में बड़ा उत्साह था। लोग समझते थे कि ओहो दशरथ जी महाराज है, इन्होंने न जाने कितना पुण्य किया है जिस कारण से इनको राम जी जैसा सुपात्र पुत्र मिला है। दशरथ जी महाराज की कृपा के सब लोग अभिलाषी थे कि ओ हमको कृपा दृष्टि से देख लेवे। ऐसे दशरथ जी की कृपा के लिए लालायित रहते थे। संपूर्ण त्रिलोकी में और तीनों ही काल में ऐसा दशरथ जी के समान भाग्यशाली कोई नहीं था कि जिनके मंगल स्वरूप राम जी महाराज बेटा हो। ऐसी ऐसी लोगों में धारणा। तो एक बार राजा का ये मुकुट था, ये मुकुट थोड़ा टेढ़ा हो गया, उनको ये सीधा किया। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन मिलो कि मुकुट सम कीना, कास में अपना मुख देखा तो यू मुकुट यू किया। तो कान के पास सफेद बाल देखे तो उनको ऐसा लगा कि ओ कान के पास ही सफेद बाल पहले क्यों आते। एक कहावत है वो संतों की बताई हुई कि काला मुंह रहता है तो काले मुंह का डर रहता है। संतों की बात है, जब तक ये काले बाल रहते हैं ना तो काला मुंह होने का डर रहता है, और सफेद मुंह हो जाता है तब फिर शांति रहती है, ऐसा बताया। अब क्या मनु जरट पर कान के पास सफेद बाल क्यों आए? कान के बाद इसलिए आए कि ये कोई भी बात चुपके से कहनी हो तो कान में ही कही जाती है, चुपके से कहो। तो ये मौत है, ये चुपके से कान में आके बोलती है क्या कि अब आपकी आयु समाप्त हो रही है, आप काले से सफेद हो गए, अब आपके काले कारनामे तो समाप्त करो और अच्छे कारनामे सफेद कारनामे में आओ। तो सबसे सफेद कारनामा भगवान का भजन है। तो श्रवण समीप भये सित केसा, मनव जरठपन अस उपदेशा। दशरथ जी महाराज के मन में ये बात आ रही है कि ये कान के पास में काले सफेद बाल ही उपदेश दे रहे हैं मुझे कि हे राजन, अब तुम राम को युवराज बना करके जीवन का उत्तम फल क्यों नहीं ले लेते? तुम्हारे राम जैसा बेटा है उसको तुम युवराज नहीं बनाओगे, तुम्हारे जीवन का तुमको कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसा राजा के मन में भाव आया। भाव राजा ने देखा कि इस भाव का क्या करूं, तो यह विचार उर आनिंदिपो सुदिन सुअवसर उपाय। अच्छा अवसर देख करके वो अपने सबसे पहले गुरुजी के पास गए। अभी तक किसी को अपनी बात बताई नहीं, सबसे पहले अपने गुरु महाराज वशिष्ठ जी के पास आए और वशिष्ठ जी से आकर निवेदन करने लगे कि महाराज राम है, सब प्रकार से योग्य हो गया, नौकर चाकर से लेकर के मंत्री तक सब आदमी राम जी की प्रशंसा करते हैं। हमारे मित्र प्रशंसा करें तो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमसे उदासीन है और हमारे जो शत्रु है वो भी राम की प्रशंसा करते हैं। जैसा ये राम मुझे प्रिय है ऐसा सभी को प्रिय है। इसमें तो महाराज आपका आशीर्वाद ही है। हमें तो ऐसा लगता है कि आपका आशीर्वाद ही इस राम के रूप में शरीर धारण करके आया है। अब महाराज जितने ब्राह्मण हैं सब परिवार मेरे पर कृपा किए हैं जैसे आप कृपा करते हो। जो अपने ब्राह्मणों का गुरुजनों का चरणों का जो रज है, चरणों की धूली है अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं, उनके पास में कोई वैभव की कमी तो रहती नहीं। मेरे समान इस संसार में ऐसा गौरव किसको मिला होगा कि आपके चरणों की धूली मेरे सिर पर रहती है। इसलिए महाराज मेरे पास कोई वस्तु आदि की तो कमी है नहीं, कोई वैभव की कमी नहीं, कोई यश प्रतिष्ठा की कमी नहीं। अब एक बात की मेरे मन में इच्छा है, वो यदि आप मुझे आज्ञा देवे तो मैं आपके सामने रखूं। हाँ बोलिए बोलिए महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं। तो राजा ने सब अपनी बात बता दी कि महाराज मैं तो राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूं। गुरुजी ने कहा कि ओहो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप राम को युवराज बनाइए, सब समाज को इकट्ठा कीजिए। राजा ने कहा महाराज बस बस यही है कि सबको इकट्ठा करके मेरे जीते जी ये काम हो जाए, तब फिर ये मेरे मन में एक लालसा पूरी हो जाए, क्योंकि मरने के समय में कोई भी इच्छा रहेगी तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, इसलिए अपने जीवन में अपनी इच्छाओं का नाश कर लेना चाहिए। कोई तो इच्छा की पूर्ति करके नाश कर लेते हैं। देखो इच्छाओं का भोग करते हैं ना, वो क्या है, नई नई इच्छाओं को पैदा करते हैं। इच्छा की पूर्ति से इच्छा समाप्त नहीं होती, इच्छा की निवृत्ति से होती है। पर राम जी की इच्छा भी बड़ी दिव्य है ये, इसलिए कहा कि यह लालसा एक मन माई, यह एक लालसा है मेरी, एक इच्छा है जो सब इच्छाओं से विलक्षण इच्छा है। दशरथ जी महाराज के वचनों को सुनकर के और गुरुजी महाराज को बहुत अच्छे लगे, कहा कि भाई जिसके भजन के बिना जीव को शांति नहीं मिलती है, उससे विमुख होने पर तो पछताना ही पड़ता है, वे भगवान तुम्हारे बेटा बनकर के आए हैं, इससे बढ़कर और क्या तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसा करो कि जो है तुम राम को युवराज बना दो। कि महाराज बना तो देवे, परंतु वो टीका टिप्पणी देख करके पंचांग देख के बताओ कौन सा दिन अच्छा है, कौन सा वार अच्छा है, कौन सा नक्षत्र ठीक रहेगा, ये सब आप देख करके बताओ। तो देखो उन्होंने कोई ग्रह नक्षत्र वगैरह कुछ नहीं देखा, कोई ग्रह नक्षत्र नहीं देखा, और कहा बेगी विलंबन करी नृपो साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो जुबराज। कोई दिन अच्छा, कोई मंगल दिन, कोई राम जी के इस राज्याभिषेक के सामने कोई दिन अच्छा नहीं है। माने दिन अच्छा कि राम जी का अभिषेक अच्छा, बताओ कि राम जी का अभिषेक अच्छा। कोई बार अच्छा है कि राम जी का अभिषेक अच्छा है। राम जी का अभिषेक का काम इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा है कि वो दिन अच्छा हो जाएगा जिस दिन राम जी का अभिषेक होगा। लोग कहते हैं देखो वशिष्ठ जी ने दिन निकाला लेकिन राम जी का तो काम तो नहीं हुआ, इसलिए सब मुहूर्त वूर्त बेकार है। कौन कहता है वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला हो? वशिष्ठ जी ने मुहूर्त नहीं निकाला, कोई नहीं बताया कि इस मुहूर्त में तुम करो। उन्होंने कहा कि जल्दी करो बस, लेकिन वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला भी। कब निकाला? जब वशिष्ठ जी, जब राम जी महाराज जीत करके आए, लंका जीत करके आए, अयोध्या में आए, तब देखा कि अब इनका राज्याभिषेक किस मुहूर्त में करें, तो वशिष्ठ जी ने मुहूर्त निकाला और आज मुहूर्त नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? कि वशिष्ठ जी महाराज को मालूम था कि बढ़िया मुहूर्त कौन सा है। बढ़िया मुहूर्त तो राम जी का जब संकल्प होगा ना राजगद्दी स्वीकार करने का, वही सबसे बढ़िया मुहूर्त होगा। हम बीच में यूं ही संकल्प क्यों करें और राजा का संकल्प भी क्यों तोड़ें, कि राजा का संकल्प भी बड़ा अच्छा है। तो वशिष्ठ जी ने कह दिया वेग विलंबन करिय नृप साजिय सबुई समाज, सुदिन सुमंगल जब ही तब राम होई जुबराज। पिंड छुड़ाया अपना, अपना पिंड छुड़ाया, बाबा आप जो कर दो वही बढ़िया है। इधर भी सारे राजा भोले वाले अपने घर पर आ गए कि ओहो चलो भाई, गुरुजी को भी साथ में ले आए। उन्होंने आकर के आज्ञा दे दी, सब लोग बड़े राजी हो गए। अब देखो एक बात बीच में कही, जो पांच ही मत लागे निका, आप पांच जनों को जो अच्छा लगेगा वही आप कही कीजिए। राम जी का टीका कर दिए, राजाभिषेक का टीका कर दिए, पांच जने कौन है? ये पांच जनों से सलाह नहीं ली ना हमारे दशरथ जी महाराज, तब बाधा आई। जो पांच ही मत लागे निका, पांच में कौन? तीन तो रानियां, एक दशरथ जी, एक राम जी, ये पांच, इन पांचों को अच्छा लगे ना तब जाकर के राम जी का टीका होगा। अब दशरथ जी महाराज ने रानियों को तो छोड़ दिया, राम जी को भी छोड़ दिया, और दशरथ जी महाराज अपने मन अपने में रह गए। जो पांच ही मत लागे नीका, करो हरसी ही राम ही टीका। राम जी दशरथ जी महाराज ने तो ये बात कह दी। इधर मंत्रियों ने देखा कि हमको तो अच्छा लगता है, ये पांच में तो हम है ही, ये तो एक कहने की बात है कि चार पांच आदमियों से पूछ लो। अरे जिनमें से मुख्य जो पांच है उनको तो पूछा ही नहीं, और दूसरे दूसरे पांच लोग आ गए। अभी मत बेरा व परे जनु पानी, देखे जैसे कोई अपने अभिलाषा रूपी कोई पौधा है, उस पौधे को जो सूख रहा है और उसमें पानी मिल जाए तो कैसा हरा हो जाए। ऐसे मंत्री वगैरह सोचते तो थे कि हमारे राम जी युवराज हो, युवराज हो, परंतु अपने मुंह से कैसे प्रकट करें। वाल्मीकि रामायण में आया कि सब राजाओं ने कहा कि दशरथ जी महाराज युवराज बना दो इनको, तो दशरथ जी ने सबकी परीक्षा के लिए एक बात कही, क्यों मेरा राज पसंद नहीं है क्या? मेरा राज्य आपको पसंद नहीं है, मैं आपको अच्छा नहीं लगता हूं कि आप राम को युवराज बनाना चाहते हो, मेरा राज्य पसंद नहीं है क्या? ऐसा प्रश्न कर लिया। तुलसीदास जी के मन में ऐसी बात नहीं आई। विनती सचिव करही कर जोरी, सचिव ने कहा महाराज आप करोड़ वर्षों तक जियो, युवराज तो आपके मरने के बाद राजा होंगे ना, आप करोड़ों वर्षों तक जियो महाराज, आपका मनोरथ इतना बढ़िया है, इतना मंगल कारक है, इसको पूरा करने में आप जरा सी भी देरी मत कीजिए। तो राजा इतने प्रसन्न हुए, सचिव भी बड़े प्रसन्न हुए। बड़त बाउड़ जनु लई सुसाखा, जैसे कोई लता है उसको कोई सहारा मिल जाए बढ़ती है यूं, कोई लता है उसको कोई वृक्ष का सहारा मिल जाए, पानी डाला वो आज इतनी बढ़ गई, दूसरे दिन इतनी बढ़ गई, तीसरे दिन यूं बढ़ती जाती है। ऐसे ही नृपई मोद सुनु सचिव सुभाषा, बड़त बाउड़ जनु लही सुसाखा, राजा का आनंद सचिव की बात सुनकर के ऐसा बढ़ने लगा जैसे कोई लता है वो वृक्ष के सहारे से बढ़ती जाती है। वशिष्ठ जी महाराज ने जिन जिन को जैसे जैसे आज्ञा दी वो सब काम होने लगे। राजा ने कहा देखो भाई सब तीर्थों, ऋषि ने कहा वशिष्ठ ऋषि ने, सब तीर्थों का पानी लेकर के आओ, अमुक दवा अमुक औषध लाओ, अमुक वृक्ष की जड़ लाओ, ऐसे ऐसे मांगलिक सब चीजें वो मंगाए, चमर मंगाए, वस्त्र मंगाए, सब सामग्री मंगाई। कह वशिष्ठ जी को मालूम था कि राज्याभिषेक होने वाला तो है नहीं, ये राज्याभिषेक होने वाला नहीं है, फिर ये इतनी सामग्री क्यों मंगाए? कि देखो ये लीला है भगवान की, यदि ये काम नहीं होता तो वनवास की तैयारी नहीं, ये वनवास की तैयारी की हो रहा है सबका। वशिष्ठ जी को वनवास की तैयारी में सब सामग्री मंगा रहे हैं, कि वनवास की सामग्री कहाँ मंगा रहे हैं? बातें तो हो रही है यहाँ पर अभिषेक की, अरे अभिषेक के अंदर बाधा तभी आएगी ना जब ये अभिषेक की सामग्री देख लेगी मंथरा और उसको विश्वास हो जाएगा, तभी तो वो कई कई को भड़काएगी, तो भड़काएगी कैसे? चमर है, अच्छे अच्छे वस्त्र है, रोम पाट अगणित जाति सब वस्तु ला करके वहां मणिगण मंगल वस्त्र मणियों का ढेर लगा दिया वहां, सफल रसाल पूग फल केरा, और ये केड़े है ना इनको काट काट करके जगह जगह वहां पर अच्छे अच्छे मांगलिक दृष्टि से लगा दिए, बहुत अच्छा सुंदर एक चौक बनाया कि भाई यहां पर सिंहासन लगेगा, यहां पर इनको बैठाया जाएगा। राजा ने सब प्रकार से पूजन वगैरह करके सब तैयारी कर ली और कह दिया, ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथ नाग, अपने जितने भी ये भवन है सब भवनों के ऊपर झंडा लगा दो, तोरण द्वार बनाओ, घोड़ों को सजाओ, नाग माने हाथियों को सजाओ, ऋषि ने सब आज्ञा दी, सब अपने अपने काम में लग गए। सब प्रकार का ये काम होने लगा और सबके मन में बड़ा उत्साह है, क्यों हो राम जी का कल अभिषेक होगा, राम जी का अभिषेक होगा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गए अवध बधावा, सारी अयोध्या नाचने से लग गई। राम जी महाराज के और सीता जी के अंग फड़कने लगे, मांगलिक अंग फड़कने लगे। अब देखो इनको वनवास होने वाला, माने पुरुष का ये दाया अंग फड़के तो शुभ होता है, माताओं बहनों के बाया अंग फड़कता है तो शुभ होता है। तो राम सीय तन सगुन जनाए, फरकई मंगल अंग सुहाए। उनको ऐसा लगता है बहुत बड़ी कोई खुशखबरी होने वाली है, कोई बहुत बड़ी खुशी का काम होगा। तो राम जी का ये दाया अंग फड़का, उनका मेरे लिए कौन सी खुशी की बात आएगी भाई। तो राम जी और सीता जी बात कर रहे हैं, सीता जी का प्रिय आज तो मेरा ये दायना अंग फड़क रहा है। सीता जी ने कहा हाँ मेरा बायां अंग फड़क रहा है। अच्छा क्या बात है, क्या खुशी हो सकती है। तो देखो भगवान की सबसे बड़ी खुशी क्या होती है, भगवान की सबसे बड़ी खुशी होती है अपना प्यारा प्रेमी भक्त मिलता है तब खुशी, उससे बढ़कर भगवान के लिए कोई खुशी नहीं, और भगत के लिए भगवान से मिलने के समान कोई खुशी नहीं। तो राम सीय तन सगुन जनाए, फरकई मंगल अंग सुहाए, पुलकी सप्रेम परस्पर कहे। दोनों आपस में बातें करते हैं क्या कि भरत आगमन सूचक है। देखो प्रिय ऐसा लगता है कि अब भरत आएंगे। अब बताओ तुलसीदास जी महाराज से कहा जाए कि भरत जी ननिहाल में चले गए, जैसे वाल्मीकि रामायण में साफ लिख दिया था कि युधाजित जी अयोध्या आए हुए थे, भरत जी के मामा जी, और उसी समय में जनकपुर से समाचार आया कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया, शादी के लिए शादी होगी, चलो सीता जी के साथ विवाह होगा, चलो। तो भरत जी ये दशरथ जी महाराज ने युधाजित को कहा, अपने साड़े को कहा कि चलो भाई तुम भी चलो, केके का भाई था, तुम भी चलोगे, चलो। अब युधाजित आया साथ साथ में दशरथ जी के, चारों भाइयों का विवाह हो गया। तो युधाजित देखा मेरे भाणजे का भी विवाह हो गया, फिर वो आ गए अपने अयोध्या। अयोध्या आकर के कहा कि महाराज मैं इसको भरत को ननिहाल ले जाता हूँ, इसके घर ले जाता हूँ, ननिहाल ले जाता हूँ। अच्छा ले जाओ। तो भरत और शत्रुघ्न चले गए, साफ लिखा हुआ, यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा ही नहीं। अब ये बात है क्यों नहीं लिखा तुलसीदास जी ने, एक चौपाई लिख देते तो क्या उनकी कोई कमी, पर इसलिए नहीं लिखा हो कि तुलसीदास जी भरत जी के हृदय में रह रहे हैं। तुलसीदास जी का हृदय इतना कोमल है कि वे भरत को राम को अलग अपने कलम से लिख नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये चौपाई नहीं लिखी कि भरत जी ननिहाल चले गए। लोगों से ही कहलवाएंगे, राम जी के द्वारा कहलवाएगा, आगे आगे जो है मंथरा कहेगी, तब अपने लोगों को पता चलेगा कि भरत जी ननिहाल गए हुए। पहली पहली बात तो यहाँ राम जी कह रहे हैं भरत आगमन सूचक है, भरत जी के आने की सूचना मिल रही है, सीते मेरे अंगों के फड़कने से ऐसा ही मांगलिक कोई समाचार मिलने वाला है ऐसा लगता है, और तो वही कोई खुशी का समाचार मेरे को पता नहीं, और तो क्या होगा, इससे बड़ी कोई खुशी भी नहीं है, भरत आगमन सूचक है। अब कोई कहेगा कि फिर भरत जी आए तो नहीं, फिर राम जी का जो अनुमान है सत्य संकल्प ईश्वर है, भगवान सत्य संकल्प है, तो राम जी के इतने अंग फड़के इतना हुआ और राम जी ने विचार किया कि भरत जी शायद मिलेंगे, तो भरत जी तो मिले नहीं, तो ये राम जी का तो सोचना राम जी का संकल्प तो मिथ्या हो गया। कहते हैं मिथ्या नहीं हुआ है, भरत आगमन सूचक है, माने अब हमारा और भरत का जिस प्रकार से जो जिस ढंग से मिलना होगा उस मिलने की सूचना कुछ और ही होगी, सारी दुनिया को सूचना मिलेगी वो अंग फड़क रहे चित्रकूट के लिए कैसे भरत और हम मिलेंगे। आज दिन तो हम भाई भाई जैसे मिलते हैं, बच्चे मिलते हैं वैसे मिले, आगे जाकर जो मिलना होगा वो मिलना बड़ा विचित्र होगा। सबसे बड़ी खुशी भगवान के जीवन में, भगवान के अवतार में चित्रकूट में हुई है। चित्रकूट में बड़ा भगवान को आनंद मिला। तो उस भरत के आगमन की बात यहाँ हो रही है कि भरत आगमन सूचक है ही, क्योंकि भगवान को भक्त के साथ, भक्ति के साथ जो मिलना होता है ना, वो मिलना होता है। अभी भरत की भक्ति के साथ मिलने की बात नहीं है, चित्रकूट में भगवान भरत के साथ मिलेंगे तो भक्ति पूर्वक मिलेंगे। क्या कहे, देखो सीए क्या बताए, बहुत दिन हो गए भरत हमसे बिछुड़ गया, तो सगुन प्रतीत भेंट प्रिय कैरी। प्रेमी व्यक्ति जब मिलता है उसके जो सगुन होते हैं वो सगुन आज हो रहे हैं, और हमारे लिए भरत के समान इस संसार में कोई प्रिय नहीं है, इससे बड़ा और क्या सगुन हो सकता है, ऐसे राम जी महाराज बोलते हैं। तो देखो राम जी की और भरत जी की कैसी प्रीति है। रामई बंधु सोच दिन राति, अंदन कमठ हृदय जई भाती। ये कछवा होता है ना, कछवी, कछवी कछवी अपने अंडे जल के बाहर देती है, बाहर देकर के मिट्टी वगैरह में उसको अंदर रखती है और स्वयं पानी में चली जाती है, और वहां हरदम अपने उनका चिंतन करती रहती है। कछवी चिंतन करती है तो वो कछवा, उसके जो अंडे हैं वो पकते हैं, चिंतन से पकते हैं। और कोई ऐसा योग आ जाए कि वो कछवी मान लो कोई मर जाए तो मरती वो अंडे भी मर जाएंगे, अंडे गल जाएंगे। ऐसा नहीं कि अंडे के अंदर से कछवा पैदा हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि उसके संकल्प के ऊपर ही वो जीते रहते हैं, बस एक क्षण भी उनको वो छोड़ती नहीं चिंतन में। अंदन कमट हृदय जयी भांति, ऐसे राम जी महाराज अपने भाई भरत का हृदय से विचार कर रहे थे। बंधु ही सोच दिन राती, अंदन कमट हृदय जयी भांति। सारे रनिवास में बड़ा मांगलिक कृत्य हो रहा है। बारिद बीच बिलास सोबत लखी बिदु बड़द जनु बारिद। उस आनंद समुद्र के अंदर क्या बताएं, जैसे समुद्र चंद्रमा को बढ़ता देख करके समुद्र बढ़ता है, ऐसे ऐसे मांगलिक समाचार के द्वारा अयोध्या में उल्लास फैल रहा है। अयोध्या रूपी समुद्र है, उसमें राम जी के राज्याभिषेक रूपी समुद्र चंद्रमा को देख करके हम अयोध्या के अंदर आनंद आनंद छा गया। जो जो आदमी जिन जिन को पहला समाचार सुनाता है, ए खुशखबरी सुना है, ये क्या, ये कल राम जी का भी, राम जी का लो लो ये लो, जो सो भरत जी की सेवा में लगा हुआ, एक पुत्र है जो राम जी की सेवा में लगा हुआ, दो पुत्रों की माँ है सुमित्रा, एक भगवान की सेवा में और एक भक्त की सेवा में। इतना आज जो सुमित्रा को आनंद का अनुभव हो रहा है, उतना किसको आनंद का अनुभव होगा। उस आनंद में सुमित्रा सब व्यवस्था संभाल रही है, राम जी की माँ है वो तो खूब दान वगैरह दे रही है, अपने देवताओं की पूजन कर रही है, राम जी का कैसे कल्याण हो, हे भगवान आप हमको ऐसा ही वरदान दो, ऐसी ऐसी अभिलाषा कर रही है। वहाँ सब सुंदर गान करने वाली स्त्रियाँ हैं, वो राम जी के अभिषेक में आनंद मग्न होकर गीत गा रही है। सब लोगों में बड़ा आनंद छा रहा है। वशिष्ठ जी महाराज को गुरुजी वशिष्ठ गुरुजी को राजा ने अपने यहाँ बुलाया और बुला करके और कहा कि देखो अब आप राम को जाकर के शिक्षा दो, कि अच्छी बात है। वशिष्ठ जी महाराज राम जी के महल में आए। राम जी ने कहा महाराज आप हमारे गुरु हैं, स्वामी हैं, आप हमको बुलाते तो अच्छा लगता, आप हमारे यहाँ आए तो आपकी न जाने कितनी कृपा हुई है। पटाई ये काज नाथ असी नीति, नीति तो यही कहती है कि आप बड़ों को हम छोटों, आप बड़ों के पास हम छोटों को आना चाहिए, पर आज तो आपने अपना प्रभुता का त्याग करके और जिस स्नेह और कृपा भाव से आप हमारे घर पधारे, तो महाराज अब आप आज्ञा दीजिए इस सेवक के लिए, क्या आज्ञा है। कहा कि देखो राम कैसे सुंदर पवित्र वंश में तुम्हारा अवतार हुआ है, कैसी पवित्र तुम्हारी भावना है, तुम बहुत श्रेष्ठ पुत्र हो दशरथ जी महाराज के, इसलिए तुम ऐसी प्रेम की बात करते हो। तो देखो दशरथ जी महाराज ने कल तुम्हारे अभिषेक का विचार किया है, तुम युवराज हो, हम तुम्हें आज कुछ विशेष शिक्षा देने के लिए आए हैं, क्योंकि युवराज होने के बाद जो हम तुमको बात नहीं कह सकते वो हम बात आज कहने के लिए आए हैं। एक बार तो एक राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी हमारा बेटा कल युवराज होगा, उसको जाकर तुम शिक्षा दो कि ठीक। तो वो पानी के अंदर कई कोड़े थे, उनको गीला करके कोड़े दो चार कोड़े की जमा दी उनके पीठ में, राजा के पास आए, शिक्षा दे दी। हाँ शिक्षा दे दी। थोड़ी देर में वो बच्चा आया कि पिताजी पिताजी मुझे तो बुरी तरह से पीटा मंत्री जी ने, देखो मेरे लिए लू पड़ गई है, मैंने तो शिक्षा के लिए कहा तुमको पीटा कि बुरी तरह से पीटा महाराज। मंत्री जी को बुलाया, मंत्री जी को कहा कि मंत्री जी आपने तो शिक्षा तो दी नहीं उसको, बीरत चौधरी को बुरी तरह से कोड़े से पीटा, ये क्या किया आपने। मंत्री जी कहा मैंने तो शिक्षा दी है, एक तो शिक्षा वचन की होती है, एक शिक्षा जो है वो प्रायोगिक होती है, प्रैक्टिकल होती है, एक केवल बोलने की होती है, तो हमने तो उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन दी है, माने उनको अभ्यास कराते हुए शिक्षा दी है कि समझे नहीं हम मंत्री जी, राजा नाराज हो गए। तो कहा कि सुनिए महाराज, ये कल युवराज हो जाएगा, फिर इसके कोई कोड़ा मारेगा तो इसको कैसे हम कोड़ा मारेंगे, ये उल्टा हमको कहीं जेल खाने में डाल देगा, आज तो ये युवराज नहीं है, अब ये आपके बाद राजा होगा, इसको पता ही नहीं कोड़े का दर्द कितना होता है, ये उठा के बोल देगा इसके 50 कोड़े मार दो, इसके 100 कोड़े मार दो, कैसा अपराध है, कैसा दंड होता है, अपराध का ये कोड़े का दर्द कैसा होता है इसको पता ही नहीं होगा, तो चाहे जैसे बोल देगा तो प्रजा में एक अराजकता फैलेगी, प्रजा पर अन्याय होगा, अब इसको पता चला ना कोड़े का दर्द कितना होता है, अब महाराज ये सोच समझ के देगा, इसको हम जबान से समझाते तो ये नहीं समझता, जबान से समझाते तो ये बात समझता नहीं, अब इसके लग गई इसीलिए समझेगा, ये ऐसे समझते नहीं। तो वशिष्ठ जी महाराज भी कहते हैं कि राम करो सब संयम आजू, आज आप सब प्रकार का संयम कीजिए। ये संयम किस विषय का है, वो ये संयम है भक्ति के विषय का, माने आप अपनी बात बिल्कुल किसी को ये मत कहना कि मैं अवतार का रूप हूँ, मैं अवतार लेकर के आया हूँ और ये वनवास होने वाला है ना, ये वनवास मैं चाहता हूँ, ये बात किसी से कहना नहीं, इस विषय का संयम है। नहीं, संयम का उपदेश तो उनको दिया जाता है जिनके जीवन में संयम नहीं रहता। राम जी महाराज तो स्वयं संयम को बताने वाले हैं, वो क्या संयम करेंगे, तो करो सब संयम आजू, सब प्रकार का संयम करना, तुम जिस लीला को करने के लिए आए हो उस लीला को आज अपने मुख से किसी से कुछ मत कहना, लक्ष्मण से भी मत कहना, दशरथ जी से भी मत कहना, प्रजा से भी मत कहना, किसी से भी मत कहना, भरत आए वहां भरत को भी मत कहना, चित्रकूट में भगवान ने किसी से भी नहीं कहा, एक से कहा एक बार, केवल सीता से कहा, वो भी सीता के लिए ही कहा कि देखो सीते तुम जिस काम के लिए आई हो उस लीला को करने का अब मौका मिला है, तुम अग्नि में छिप जाओ और एक प्रतिबिंब को यहां रख जाओ, इतनी सी बात कही राम जी ने। तो क्या है कि कर राम करो सब संयम आजू, देखो राम आज का दिन है ना, ये तुम्हारे सब प्रकार के संयम का दिन है। आज यदि तुम पोल खोल दोगे तो कैसे भरत का उत्कर्ष लोग जानेंगे, लोग क्या जानेंगे, अभी आप एकदम संयम रखना, ये मत बताना कि मैं अवतार लेकर के आया हूं, केकई को लोग बुरा बुरा कहेंगे, उस समय भी आप ये मत बोलना कि केकई मेरी प्रेरणा से कर रही है, ये बात भी मत बोलना, सब प्रकार का संयम करना। क्या सुंदर बात कही गुरुजी महाराज ने, कितनी गहरी बात कही, राम करो सब संयम आजू, केकई के लोग डांटेंगे फटकारेंगे, और तुम्हारे पिताजी ही कैकेयी को डांटेंगे, उस समय भी तुम यदि पोल खोल दोगे तो ये संयम नहीं रहेगा। आप अपनी माँ के भी प्रेम के अंदर डूबना नहीं, सब प्रकार का संयम करना। क्यों करना? जय विधि कुशल निबाहे काजू, जिस प्रकार से तुम्हारा काम कुशल पूर्वक निभ जाए। क्या खुली बातें हुई है और कितनी गुप्त बातें हुई है, तीसरा आदमी समझेगा वो तो समझेगा ही नहीं। लेकिन वशिष्ठ जी महाराज ने कहा कि जय विधि कुशल निबाहे काजू, जिससे तुम्हारा सब काम कुशल पूर्वक हो जाए। राम जी ने कहा ठीक है महाराज। गुरु सिख दे राय पै गया हूँ, गुरु जी महाराज तो चले गए और राम हृदय अस विस्मय भयऊ, राम जी के हृदय में बड़ा अचंभा हुआ और वे देखने लगे क्या बात है। देखो सीते, जन्मे एक संग सब भाई, हम सब भाई एक दिन ही तो पैदा हुए, सब भाइयों का जन्म एक दिन ही हुआ है। राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी वगैरह एक ही दिन पैदा हुए, एक दिन हुए तो बड़े छोटे कैसे हुए? राम और लक्ष्मण बड़े छोटे, भरत और शत्रुघ्न बड़े छोटे, राम और भरत बड़े छोटे। भरत है वो लक्ष्मण से बड़े हैं, शत्रुघ्न से बड़े हैं, लक्ष्मण है वो शत्रुघ्न से बड़े हैं। तो ये लक्ष्मण शत्रुघ्न से बड़े, ये बड़े छोटे क्यों हुए भाई? एक ही दिन पैदा हुए तब कि रानी बड़ी छोटी थी, रानी बड़ी और छोटी थी, इसलिए कौशल्या जी सबसे बड़ी तो राम सबसे बड़े। माता के बड़प्पन से बेटा बड़े छोटे हुए, जन्मे एक संग सब भाई। देखो एक ही नक्षत्र में एक ही समय में सबका, चैत्र सुदी नवमी में एक ही नक्षत्र में सबका जन्म हुआ है। और भोजन शयन केली लरिकाई, और कर्ण वेद उपवीत विवाह, ये कर्ण वेद जनेऊ संस्कार, ये भी सब एक साथ हुआ। हम सब काम एक साथ करते, गुरुजी के पास भी एक साथ पढ़े, विवाह भी हमारा एक साथ हुआ, पर ये क्या बात है कि बड़े इस रघुवंश में ये क्या एक बात है कि और भाइयों को छोड़ करके बड़े का ही अभिषेक किया जाता है? अब कहे महाराज, आप खुद ही तो बोलते हो कि हम एक साथ जन्मे, एक साथ ही बड़े वेर, एक साथ ही विवाह वार, आप खुद ही अपने को बड़ा बता रहे हो कि हमारे वंश में एक बड़ी अनुचित बात है कि और भाइयों को छोड़ करके बड़े का अभिषेक किया जाता है, फिर आप बड़े तो हो ही ना, वो बड़प्पन क्या है आपका? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं प्रभु सप्रेम पचितानी सुहाई, हरऊ भगत मन के कुटिला। ये सबसे बड़ा बड़प्पन है। भगवान की जो ये पश्चाताप भरी वाणी है, ये जो पछतावा है कि देखो और भाइयों को छोड़ करके और हमको राज्य दे रहे हैं, ये चीज अच्छी नहीं है, अनुचित है, ये जो पछतावा है, ये पछतावा भगत के मन की कुटिलता को हरता है। भगत के मन की, अब भगत है तो कुटिलता नहीं है, कुटिलता है तो भगत कहां रहा? तो भाई हरऊ भगत मन के कुटिलाई, तो भगत की कुटिलता क्या होती है? भगत की कुटिलता होती है कि मैं खूब भजन करता हूं, मैं बहुत बड़ा हूं, ये लोग तो भजन नहीं करते और मैं भजन करता हूं, ये जो कुटिलता है, ये कुटिलता केवल भगवान की कृपा से ही दूर होती है और कुछ नहीं, और कोई किसी से दूर नहीं होती। वो भगवान की कृपा क्या है? ये जो भगवान का पछतावा है ना, ये कृपा है। भगवान अपने कृपालु स्वभाव से ये जो पश्चाताप करते हैं कि और भाइयों को राजगद्दी न मिले और हमको ही मिले, ये ठीक नहीं है, ये भगवान की कृपा है। हरऊ भगत मन के कुटिलाई। उसी समय में लक्ष्मण जी ने भी समाचार सुने थे, वे भी आए और राम जी से बड़े प्रेम से मिले और कह रहे राम जी के आए आइए आइए लक्ष्मण आइए, देखो ऐसा लगता है कि भरत आगमन सकल मनावाई, अरे भरत जी के आने की ऐसी बात हो रही होगी, देखो सब गलियां वगैरह सजाई जा रही है, ऐसे सब लोग बड़े आनंदित हो रहे हैं। एक तरफ तो ये बात हो गई और दूसरी तरफ आकाश में अब देवता लोग अपनी मीटिंग करके क्या प्रस्ताव पारित करते हैं, ये कथा अब कल प्रसंग आएगा।
सीताराम 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 जय सीताराम जय
सीताराम 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 जय सीताराम जय।
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय
सीताराम सियावर राम चंद्र की जय मोर मुकुटवंशी वाले
की जय
अनंत श्री हरि राम दास जी महाराज की
जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय
जय जय